शांति। कोई भी गुणवान व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति भी अवश्य होगा, क्योंकि जीवन में कोई श्रेष्ठ जिम्मेदारी उठाना यह भी एक महान गुण है। जिम्मेदारी मनुष्य के अंदर कई गुण ले आती है, इसीलिए जिम्मेदारी भी एक महान गुण बन जाता है जो अनेक गुणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। श्रेष्ठ जिम्मेदारी अर्थात ऐसा कार्य करने की हिम्मत रखना जिसमें स्वयं के साथ अनेकों का कल्याण समाया हो। अगर केवल खुद का ही कल्याण समाया हुआ हो, वही जिम्मेदारी पूर्ण जिम्मेदारी नहीं मानी जाएगी। लेकिन संपूर्ण जिम्मेदारी या श्रेष्ठ जिम्मेदारी वही मानी जाएगी जिसके फल स्वरूप अनेक आत्माओं का उसमें कल्याण समाया हुआ हो, और जहां अनेक आत्माओं का कल्याण है वहां स्वयं का कल्याण तो हो ही जाता है। जिम्मेदारी केवल अनुभवी ही नहीं बनाती, लेकिन साथ साथ शक्तिशाली भी बनाती है। कई लोग जिम्मेदारी उठाने से घबराते हैं, समझते हैं कोई भी अगर हम जिम्मेदारी उठाएंगे तो अनेक समस्याएं पैदा होगी, अनेक विघ्न आएंगे, परेशानियां होगी, क्या क्या मन में कष्ट होंगे, तो इससे ठीक है कोई भी जिम्मेदारी उठाने की आवश्यकता नहीं है। और खास करके इस कलयुगी दुनिया में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं किसी कार्य को लेकर, अनेक विघ्न तो एक स्वाभाविक बात हो जाती है। केवल प्रकृति के ही विघ्न नहीं आएंगे, लेकिन मनुष्यों के भी विघ्न अनेक आएंगे। लेकिन इन सब बातों को देखते हुए जिम्मेदारी नहीं उठाना, ये तो एक कायरता है। एक कायर व्यक्ति ही सोचेगा कि मैं क्यों जिम्मेदारी उठाऊं, और उस कायरता के कारण जिम्मेदारी उठाएगा नहीं, और फलस्वरूप सुस्ती, अलबेलापन, यही अवगुण उसके अंदर में आ जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति श्रेष्ठ जिम्मेदारी उठाता है वो पल पल पर अनुभवों की खान इकट्ठा करता जाता है, और जितने जितने उसके अनुभव बढ़ते जाते हैं उतनी उतनी अंतर की आत्मा भी शक्तिशाली बनती जाती है, और सुस्ती और अलबेलापन अपने आप समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं होती है तो सुस्ती अपने आप आती है। आप मान लीजिए रोज दफ्तर जाते हो, पर जिस दिन छुट्टी का दिन होगा आप सोचेंगे चलो आज सो जाते हैं। तो जैसे कहा जाता है कि घोड़े बेच के इंसान सो जाता है, उठाने पर भी वो उठता नहीं, सोचता है कि आज तो मेरी छुट्टी का दिन है, आज तो मुझे आराम करने दो। लेकिन जिस दिन दफ्तर जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, कोई ट्रेन पकड़नी है, तो नींद ही हराम हो जाती, क्योंकि वो जिम्मेदारी हमको निभानी पड़ती है। लेकिन जितनी ही आप जिम्मेदारी निभाओ उतनी ही अंदर में एक हल्की स्थिति अपनाओ, यह एक बहुत ऊंची कला है। जिम्मेदारी उठाना ये तो महान गुण है ही, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाते हुए भी हल्कापन रहे, ये एक कला है। अब उसको हम कैसे अपने मन में अनुभव करें? वास्तव में जिम्मेदारी से क्या क्या फायदे होते हैं ये हम अपने मन को समझाएं। जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा फायदा है कि उसकी सफलता का लक्ष्य हमारी सूक्ष्म कमजोरियों की ओर ध्यान खींचवाता है। कई मन में कमजोरियां होगी जो हमें शायद पता भी नहीं चलती होगी, और हम समझते होंगे कि नहीं, ये कमजोरी मेरे में नहीं है। लेकिन जिस समय जिम्मेदारी आती है उस समय अपनी कमजोरियों का पता चलता है। लेकिन कमजोरियों का पता होने के बावजूद भी जिम्मेदारी को छोड़ देना यह भी कायरता है। उस समय हम अपने अंदर आत्मविश्वास और हिम्मत धाड़स मन में बांधे, क्योंकि ये तीनों ही गुण जिम्मेदारी में शक्ति भरते हैं। एक है आत्मविश्वास, दूसरा है हिम्मत, और तीसरी है अंतर की शक्ति, जिसको हम धाड़स कहते हैं। हिम्मत तो आपको अनेक दिलाएंगे, लेकिन धाड़स ये अंदर से आएगा, ये अंतर की शक्ति है जो आत्मविश्वास के आधार पर पैदा होती है। तो जहां आत्मज्ञान है, आत्म संयम है, साथ साथ आत्मविश्वास है, तो उसे आत्मबल अपने आप पैदा होता है, और यही आत्मबल जिम्मेदारी में सफलता प्राप्त कराता है। आत्मविश्वास का अर्थ है कि अंतर में ये सोचना कि ये कार्य अगर मुझे ईश्वर ने दिया है या किसी ने मुझे दिया है मानवता के कल्याण के प्रति, तो अवश्य मेरे अंदर गुण देख करके ही दिए होंगे। और अगर मेरे अंदर ये गुण न भी है पर जिम्मेदारी उठाने से वो गुण अपने आप आता है। भगवान हमें मदद करता है क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत है, तो हिम्मत का गुण तो मुझे अपने अंदर भरना होगा, तब भगवान की मदद मिलती है। तो जिम्मेदारी भी तब मिलती है जब हमारे अंदर वह गुण होगा, बिना गुण के जिम्मेदारी मिलेगी भी नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति हमें जिम्मेदारी देता है तो समझो वह गुण अवश्य मेरे अंदर है। इससे आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। इसी प्रकार हिम्मत और धाड़स आने के लिए अंतर में सोचो कि परमात्मा की मुझे मदद है, ये ऊंचा कार्य है, ये ईश्वर का कार्य है, ये मानवता के कल्याण का कार्य है। तो जहां ईश्वर का कार्य है तो ईश्वर की भी शक्ति हमें अवश्य मिलेगी। अगर उनका ही मैं कार्य कर रहा हूं तो शक्ति भी तो अवश्य वही देगा। परंतु जिम्मेदारी उठाने से पहले ही हम ये सोच लेते हैं कि मेरे से तो ये नहीं होगा, मैं तो ये नहीं कर सकूंगा, तो क्योंकि पहले से ही हिम्मत हार ली तो परमात्मा की मदद भी नहीं मिलती है। जिम्मेदारी निभाते हमें हल्का रहना है, उसके लिए परिणाम का त्याग करने की आवश्यकता है। हम परिणाम पहले से ही न सोचें। कई ऐसे लोग हैं जो परिणाम पहले सोच लेते हैं फिर कार्य करते हैं। कई ऐसे सोचते हैं कि हो सकता है मुझे इस कार्य में असफलता मिले, तो पहले से ही हमने परिणाम सोच लिया तो कैसे हमें सफलता मिलेगी। मन में पहले से ही हमने नेगेटिव थिंकिंग कर ली तो शक्ति भी नहीं मिलेगी। शक्ति आत्मा को तब प्राप्त होगी जब अंदर से पॉजिटिव या सकारात्मक सोच चलेगा। पहले तो ये सोच चले कि यह कार्य मैं अवश्य कर सकता हूं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जैसे नेपोलियन की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल या असंभव जैसा कोई शब्द था ही नहीं। उसने कहा इस दुनिया में यह शब्द हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सब कुछ संभव है। तो सब कुछ संभव है ये आत्मा को तब अनुभव होगा जब अंतर में हिम्मत और धाड़स या शक्ति दोनों होगी तो परमात्मा की मदद भी मिलेगी। इसीलिए परिणाम का त्याग करके फिर हम हिम्मत रख करके कोई जिम्मेदारी उठाएं और अंदर में ये सोचे कोई बात नहीं, अगर हम हार भी खा लेते हैं, अगर असफल भी हो जाते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात हुई, कौन सी बुरी बात हुई, कम से कम इससे अनुभव तो मेरा बढ़ा, क्योंकि कदम कदम पर हमें अनुभव होने चाहिए और अनुभव होना यही आत्म उन्नति की निशानी है। अगर जीवन में अनुभव नहीं हो रहे हैं तो हम कैसे पता करें कि हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। तो अनुभव होना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और कहा जाता है कि अनुभवी के आगे दुनिया की कोई भी शक्ति हार खा सकती है, क्योंकि अनुभवी एक महान व्यक्ति बन जाता है। हम किसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं तो हमें पहले से ही पता है कि उस पहाड़ी पर चढ़ने से ये कष्ट आएंगे, उबड़ खाबड़ रास्ते मिलेंगे, आंधी आएगी, तूफान आएगा, कई पत्थर रोड़े कंकड़ ये हमारे रास्ते में आएंगे, हो सकता है जंगली जानवर भी सामना करे, बहुत कुछ होगा, लेकिन मुझे चलते जाना है। ये मन में अगर निश्चय कर लेंगे, हिम्मत रखेंगे, तो अवश्य कदम कदम पर अनुभव तो बढ़ेंगे ही, लेकिन वो अनुभव हमें शक्तिशाली बनाएंगे। इसलिए कभी भी जिम्मेदारी से घबराना नहीं चाहिए। आप ये सोचो कि भगवान ने ये जिम्मेदारी दी है, कार्य उनका है, उस कार्य को करने की हिम्मत भी उन्होंने दी तो मदद भी वही देगा, तो कार्य करते हुए भी हम निरसंकल्प स्थिति का अनुभव करते हैं और जब कार्य करने के पश्चात उसका परिणाम हम भगवान पर छोड़ देते हैं तो अनुभव कहता है कि सफलता एक वरदान के रूप में हमें ईश्वर के द्वारा प्राप्त होती है। सफलता दिलाना ये भी ईश्वर का ही कार्य है, मनुष्य क्या सफलता दिलाएगा। सफलता अगर मनुष्य दिलाएगा तो शायद थोड़ी सी महिमा कर लेगा या थोड़े से धन की प्राप्ति हो जाएगी या मान इज्जत की प्राप्ति हो जाएगी और हम इसको सफलता ही समझ लेते हैं, लेकिन यह सफलता तो विनाशी सफलता है, यह क्षण भंगुर की सफलता है। सच्ची सफलता तो तब मानी जाए जब कोई महिमा करे या न करे, हमें कर्म की खुशी रहती है क्योंकि कर्म हमने ठीक किया। परंतु जितना ही कर्म करने पर हमारा ध्यान हो उतना ही व्यवहार का शुद्धिकरण भी अवश्य हो और साथ साथ संबंध भी हमारे एक दो के साथ श्रेष्ठ बने रहे, क्योंकि ये तीनों बातें जिम्मेदारी में आती है। जिम्मेदारी अर्थात कर्म ऊंचा हो, हमारा व्यवहार व्यक्तियों से श्रेष्ठ हो और संबंध भी सुखदायक बने रहे, ये जिम्मेदारी का लक्ष्य होना चाहिए। कर्म ऊंचे हो पर संबंध एक दो के बीच विपरीत हो या व्यवहार एक दो से अच्छा न हो तो वह जिम्मेदारी कभी हमें सफलता नहीं देगी। लेकिन श्रेष्ठ जिम्मेदारी निभाने के लिए इन तीनों बातों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कर्म कोई बड़ी बात नहीं है, कर्म तो हम सदा करते ही रहते हैं, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा व्यवहार श्रेष्ठ हो, व्यवहार के अंतर्गत हमारी मित्रता बनी रहे, संबंध हमारे सदा ऊंचे हो। अगर कर्म केवल ऊंचा है और व्यवहार और संबंध ऊंचा नहीं तो जिम्मेदारी जिम्मेदारी ही नहीं है, क्योंकि कर्म तो फिर भी मोटा रूप है। वो कर्म आज आवश्यक है कल शायद उसकी आवश्यकता भी न पड़े, लेकिन संबंध और व्यवहार ये दूरगामी प्रभाव छोड़ते हैं। कर्म का तो मोटा रूप है और उसका प्रभाव भी लिमिटेड है, सीमित है, पर व्यवहार और संबंध का जो दूरगामी प्रभाव है वही मन की स्थिति को अपना स्वरूप देता है। अगर व्यवहार और संबंध हमारे अच्छे बने रहे तो सफलता केवल उसी समय ही नहीं मिलती, परंतु वो सफलता सदा काल की सफलता हो जाती है। और जहां सदा काल की सफलता हुई तो समझो जिम्मेदारी की भी सफलता हुई। अब हम किस किस को जिम्मेदारी कहेंगे, श्रेष्ठ जिम्मेदारी का अर्थ क्या है, किसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है? तो सबसे पहले हम देखेंगे अपनी आत्मा के प्रति ही हम सब की जिम्मेदारी है। मैं एक आत्मा हूं ये निश्चय करना ही पर्याप्त नहीं है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शुद्ध स्वरूप हूं, ये चिंतन करना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन उस चिंतन के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमको मिलती है, आत्मा के शुद्धिकरण की जिम्मेदारी। क्योंकि मैं आत्मा जब इस संसार में आई तब शुद्ध स्वरूप में आई, और अब जब मुझे वापस जाना है इस संसार से अपने धाम में जाना है, तो फिर उसी शुद्धि की स्थिति से वापस जाना है। जैसे हम किसी स्थान पर आते हैं, शुद्ध स्थिति में आते हैं, तो जाना भी तो उसी शुद्ध स्थिति में ही होगा। हम घर से बाहर खेलने जाते हैं या घूमने जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, वहां दिन भर की मैल चढ़ जाती है, थक जाते हैं, तो जैसे ही हम घर आना चाहेंगे तो घर आते समय हम फिर से वो थकावट मिटाएंगे, स्नान करेंगे, शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि उसी स्थिति से हम अपने घर से गए थे। तो आत्मा भी जब परम धाम से इस सृष्टि पर आई तो शुद्ध स्थिति में आई, अब वापस उसे शुद्ध स्थिति में जाना है। तो आत्मा की शुद्धिकरण की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हर आत्मा पर है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आत्मचिंतन की आवश्यकता है, आत्मज्ञान की आवश्यकता है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की आवश्यकता है, ईश्वर चिंतन की आवश्यकता है। ये सारा मन में चिंतन और कर्मों का शुद्धिकरण आत्मा की शुद्धि का अनुभव कराएगा, और तब हम कहेंगे कि हमने आत्मा को शुद्ध करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई। परंतु जितना ही आत्मा के शुद्धिकरण की जिम्मेदारी हो उतना ही फिर शरीर की भी जिम्मेदारी है। केवल आत्मा की ही जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि शरीर मुझे कर्म करने के लिए मिला हुआ है। इस शरीर के द्वारा मैं आत्मा बहुत कुछ कर्म करती हूँ, तो इस शरीर को ठीक संभाल के रखना ये भी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि शरीर भी अमूल्य चीज है। वैसे कहते हैं कि मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, तो जब ये दुर्लभ जन्म है, दुर्लभ शरीर है, दुर्लभ जीवन है, तो अवश्य इस शरीर की भी मुझे अच्छी तरह से संभाल करनी ही होगी। तो उसके लिए ठीक खुराक हो, भोजन हो, पानी हो, हवा हो, व्यायाम हो, ये सारी बातें अगर हम शरीर को ठीक रीति से देंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और जितना शरीर स्वस्थ रहेगा उतना हम शरीर से सेवा भी ठीक रीति से कर सकेंगे। तो आत्मा के प्रति जिम्मेदारी, शरीर के प्रति जिम्मेदारी, फिर परिवार के प्रति भी जिम्मेदारी है हमारी। जिस रचना को हमने रचा है उस रचना की पालना करने की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वह जिम्मेदारी नहीं निभाई तो फिर भी हम कायर गिने जाएंगे, क्योंकि रचना को तो हमने रच डाला, पर रचना की पालना करने की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे भगवान ने इस संसार को रचा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई भगवान ने इस संसार को रचने की, लेकिन जैसे ही रचा रच कर छोड़ नहीं दिया है। परमात्मा हम आत्माओं की पालना भी करते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि चींटी को भी भगवान खिलाता है, चींटी भी भगवान की पालना से चल रही है, तो इंसान तो बड़ी बात है। तो ईश्वर हरेक की पालना कर रहा है, ये हम आत्माओं को विश्वास है। तो भगवान रचयिता है तो पालनहार भी है। इसी प्रकार अगर हम रचना रचते हैं तो उनकी पालना करने की भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन पालना करने की जिम्मेदारी का अर्थ केवल इतना ही नहीं कि हम अपने बच्चों को रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे और सोचे कि बस यही मेरी जिम्मेदारी है, यही मेरा फर्ज है और ये फर्ज मैंने अदा कर लिया, ये पूरा हुआ। नहीं, जितनी उसके शरीर के प्रति जिम्मेदारी है उतनी ही अपने बच्चों के आत्मा के प्रति भी जिम्मेदारी है। और आत्मा की पालना कैसे होती है? गुणों से होती है। शरीर की पालना तो रोटी कपड़े मकान से होती है, लेकिन आत्मा की पालना गुणों द्वारा होती है, क्योंकि हर आत्मा को स्नेह की आवश्यकता है, खुशी की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है। तो आत्मा को भी शक्ति देना, खुशी देना, प्यार देना, ये है उसकी पालना करना। तो परिवार की पालना करना अर्थात जिस रचना को हमने रचा है उनके शरीर और आत्मा दोनों की पालना करने की जिम्मेदारी उठाना। और जहां पर परिवार के पालना की जिम्मेदारी आती है, फिर बेहद रूप में हम देखते हैं कि संसार एक वसुधैव कुटुंबकम है, वह भी एक बेहद का परिवार है। जैसे हम शरीर के हद के परिवार के पीछे जिम्मेदार स्वयं को अनुभव करते हैं, वैसे विश्व परिवार के प्रति भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह परमात्मा की रचना है, हम भी ईश्वर की एक रचना है। तो जहां अन्य रचना है वहां हम भी रचना है, तो सारी रचना हमारा भाई हो गई। आत्मा आत्मा, भाई भाई माना गया है। तो रचना की जिम्मेदारी जितनी भगवान की है उतनी उनके बच्चों की भी है। हम ये न सोचे कि केवल भगवान की ही जिम्मेदारी है दुनिया की पालना करने की। नहीं नहीं, जैसे पिता के ऊपर जिम्मेदारी होती है वैसे ही उनके बड़े बच्चे पर भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है छोटों बच्चों के प्रति। तो छोटे बच्चों की पालना के लिए बड़ा भाई भी जिम्मेदार हो जाता है। इसीलिए हम कहेंगे कि मानव जो ईश्वर की श्रेष्ठ रचना है उसके ऊपर भी जिम्मेदारी है ईश्वर की अन्य रचना की पालना करने की। तो जैसे हद के रचयिता हम बन जाते हैं और उसकी पालना करते हैं, वैसे बेहद के रचयिता परमात्मा के मददगार बन करके बेहद रचना की पालना करने की भी हम जिम्मेदारी उठाएं कि कैसे सबको सुख मिले। केवल मुझे ही चाहिए ये मन में कभी भी भावना न बने, लेकिन सबको सुख मिलेगा तो अवश्य मुझे तो मिलेगा ही, क्योंकि मैं सब में समाया हुआ हूं, मैं सबसे अलग नहीं हूं। और जहां सबको सुख मिलेगा अवश्य उनके सुख का फल हमें तो प्राप्त होगा ही, क्योंकि उनकी दुआएं ही हमारे भाग्य को उज्जवल बना देगी। इसीलिए उनकी पालना करने का भी फर्ज है हमारे ऊपर, शरीर की भी तो आत्मा की भी। और जितनी हमारी अन्य आत्माओं के प्रति जिम्मेदारी है उतना ईश्वर के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। जैसे एक पिता जब अपने बच्चों को रचता है तो इस लक्ष्य से रचता है कि मैं जब बुजुर्ग हो जाऊंगा तो मेरे बच्चे मेरी पालना करेंगे, क्योंकि पिता बुजुर्ग हो गया, बच्चे जवान हैं, तो यह उम्मीद हर पिता अपने बच्चों के प्रति रखता है। तो बच्चों का भी फर्ज बन जाता है कि अपने पिता की पालना करने का। तो परमात्मा के प्रति भी हमारा कोई फर्ज है। हम ये न सोचें कि केवल ईश्वर का ही हमारे प्रति फर्ज है। भगवान को हमें खिलाना है, भगवान को हमें सुख देना है, भगवान को ही हमें सब कुछ देना है, लेकिन हमारा भी कुछ फर्ज है ईश्वर के प्रति। और वह फर्ज है कि हम परमात्मा का नाम रोशन करें। जिस लक्ष्य से हम इस संसार में आए थे, उसी लक्ष्य को हम प्राप्त करने के लिए वैसे ही लक्षण धारण करें। और वह लक्षण है कि अपने असली स्वरूप को पहचाने, अपने पिता परमात्मा के स्वरूप को पहचाने, और उस पहचान के आधार पर अपने कर्म श्रेष्ठ करके ईश्वर का नाम रोशन करें। इनसे बड़ी जिम्मेदारी और कोई नहीं होगी संसार में, क्योंकि इस जिम्मेदारी के अंतर्गत अन्य सब जिम्मेदारियां समा जाती है। क्योंकि बीज को अगर पानी दे दिया तो जैसे सारे वृक्ष को पानी दे दिया। तो मन में सदा सोचो, मुझे जिम्मेदारी से घबराना नहीं है। जिम्मेदारी निभाएंगे, शक्ति आएगी, उमंग आएगा, हिम्मत होगी और भगवान की मदद अवश्य मिलेगी। और उसके आधार से मैं स्वयं को बदलकर विश्व का परिवर्तन कर सकूंगा। ओम शांति।